Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2342-1050 and 2331-4444. Those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hai Market Mantra ke ek aur taazan ke saath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lenge, saath hi nazar dalenge pramukh antarrashtriya share bazaron ke chadte utarte graph par. Baat karenge kaisa performance raha Sensex aur Nifty ka is saptah. और आज का दिन शनिवार का है और कॉलर्स चाहें तो हमसे फोन करके सीधे सवाल पूछ सकते हैं. दो टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं. नंबर्स हैं 2342-1050 और 2331-4444. दोनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ कॉल करें, अपने सवाल पूछें, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं सीनियर बिजनेस जर्नलिस्ट शिशिर सिन्हा. शिशिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
धन्यवाद.
वार्म वेलकम शिशिर.
थैंक यू.
शुरू करते हैं मार्केट मंत्र. सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में.
बेंचमार्क इंडिसेस सर्ज 2% इन सेकेंड स्ट्रेट वीक ड्यूरिंग 24th of May. सेंसेक्स राइजेस 1,404 पॉइंट्स. निफ्टी गेन्स 455 पॉइंट्स. मालदीव्स सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज रुपे सर्विस एंड इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स जंप टू अ न्यू ऑल टाइम हाई of $648.7 billion.
भारतीय शेयर बाजारों में सप्ताह 2% का उछाल. सेंसेक्स 75,410 पर पहुंचा तो निफ्टी 22,957 पर. पड़ोसी देश मालदीव जल्द ही भारतीय रूपे सेवा शुरू करेगा. मालदीव की मुद्रा रूपिया को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम. और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $4.5 billion से अधिक बढ़कर 648.70 billion पर पहुंचा.
बेंचमार्क इंडिसेस सर्ज 2% इन सेकेंड स्ट्रेट वीक एज द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DII हैव टर्न्ड बायर्स. द BSE सेंसेक्स सर्ज 1,404 पॉइंट्स or 1.9% to 75,410 during the week ended on May 24. Similarly, the Nifty gained 455 points or 2.2% to 22,957. Sector-wise, the BSE Capital Goods Index was the top performer with a gain of 4.7%, followed by metal with an increase of 2.8% and power sector of 2.5%. On the other hand, the healthcare index declined by 0.6% during the week. In FII-DII investments, the available data reveals that in the current month, DIIs have bought equity worth 40,986 crore rupees as of May 24. On the other hand, FIIs sold rupees 22,046 crore of equities in May so far. However, there was a change in their strategy last week when FIIs have turned buyers and purchased the shares worth 6,195 crore rupees, while DIIs bought the shares worth about 6,978 crore rupees. We will discuss this story in detail with Shishir after this call, where we are welcoming Yogesh from Delhi. A warm welcome, Yogesh.
Thank you so much. Namaskar aap sabhi ko.
Ji, namaskar.
Sir, mera sawal ye hai ki hame do sawal hain. एक तो है कि हमारे जो क्रूड ऑयल के प्राइस होते हैं, जो कच्चे तेल का भाव होता है, वो पेंट के शेयरों में कैसे असर डालता है, यानी कि अगर कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो क्या पेंट के शेयरों के लिए बुरी बात है या अच्छी बात है? एक सर मेरा एक और सवाल, ये छोटा सा सवाल है कि क्या आपकी नजरों में कोई ऐसी कंट्री है जहां पे शेयर मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता और फिर वहां पे उनकी इकोनॉमी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
योगेश जी, आपके दूसरे सवाल का अगर मैं जवाब पहले लूं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई देश नहीं है। हो सकता है, देखिए 200 से भी ज्यादा देश हैं और उसमें से अगर मैं संयुक्त राष्ट्र की बात करूं जो लगभग 194 देशों को ट्रैक करते हैं, या विश्व बैंक की बात करें जो 190 देशों को ट्रैक करते हैं, या IMF की बात करूं, तो ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, मुझे भी रिसर्च करने का मौका दिया है आपने और हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि कच्चे तेल के भाव और पेंट इंडस्ट्री के ऊपर, देखिए निश्चित तौर पे असर तो पड़ता है और वो असर आप जिसे कह सकते हैं कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप में भी हमने कई बार देखा है कच्चे तेल और पेंट इंडस्ट्रीज के बीच में, और उसकी एक वजह होती है कि उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो किस तरीके से उसमें प्रभाव डालते हैं, उसका असर उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो बहुत बहुत मेजर जिसे कहा जाए कि चेंज आ जाता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से पेंट इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, एक छोटा कॉम्पोनेंट है जिस पर असर पड़ता है।
Joining us from Delhi is Prakash. A warm welcome, Prakash. Hello.
Hello, Market Mantra team पर नमस्कार।
नमस्कार।
मेरा एक सवाल है, एक 2015 में प्रधानमंत्री जी ने सुकन्या समृद्धि योजना स्टार्ट की थी।
जी जी।
उसमें मेरी ग्रैंड डॉटर 9 साल की थी और हमें ये बोला गया था कि 18 ईयर्स की होने के बाद वो आप उसको मैच्योर करा सकते हैं केबल का। अब वो 18 ईयर्स की हो गई है तो पोस्ट ऑफिस कहते हैं नहीं 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है, क्या ऐसा है 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड है?
सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि में जहां तक मेच्योरिटी की बात है वो बच्ची के मेच्योर होने के बाद कर सकते हैं, ये लॉकिंग की तो मुझे भी जानकारी नहीं कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन हाँ ये है कि आप उसके बच्चे के मेच्योरिटी होने पे आप विड्रॉ कर सकते हैं और अगर वो 18 साल के ऊपर हो गई हैं तो उसका मकसद यही है कि जैसे उसमें कहा गया था कि 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए आप निवेश करते हैं, शुरू करते हैं, और उसका मकसद यही था कि एक लंबे समय के लिए करें जिससे कि उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए एक अच्छी खासी रकम का इंतजाम हो सके। इसके पहले एक जो सवाल पूछा था योगेश जी ने, अभी अभी मुझे रिसर्च करके हर्ष भाई ने भी बताया है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, जैसे आप इथोपिया का एग्जांपल ले सकते हैं, जाम्बिया है, माफ कीजिएगा, गयाना है, लाइबेरिया है, मडागास्कर है, नॉर्थ कोरिया है, सोमालिया है, साउथ सूडान है, ऐसे कई देश हैं जहां
ज्यादातर अफ्रीकन देश
हैं, ज्यादातर अफ्रीकन देश हैं और ये वो देश हैं जो एक अलग ही तरह की व्यवस्था में चलते हैं
जी।
इनका कोई वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा असर है वो नहीं है। तो योगेश जी धन्यवाद आपका, आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था और धन्यवाद ये हर्ष आपका, आपने ये जवाब जो हमें दिया।
अतानु शाह कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतानु बहुत बहुत स्वागत, आप रेगुलर लिसनर हैं, क्या सवाल है आज का आपका?
गुड इवनिंग सर, प्रीवियसली आई कुड नॉट राइज माय क्वेश्चन ड्यू टू गेस्टिंग हियर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, व्हाई साइको इकोसिस्टम एसेंशियल फॉर हु आर डूइंग बिजनेस और दो हु आर स्टार्टअप? एंड अनदर क्वेश्चन सर,
नहीं आपका आपका आतानु जी आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ आज।
व्हाई साइको इकोसिस्टम, वाई साइकोलॉजिकल इको,
साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम,
हाँ साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम इज एसेंशियल फॉर देम हु आर डूइंग बिजनेस एंड हु आर स्टार्टअप। Am I the question is right?
Yeah, it's okay, please go ahead.
And my second question is, ma'am, sir, Sisila ji, interim and full fledged budget is might be, but how do we predict upcoming budget policy, mainly the capital gain area, capital footprint?
Okay, now coming to your first question about the psychological ecosystem, so for any business this kind of psychologically system is very much required, and we need to understand that in any business साइकोलॉजिकल इको सिस्टम इज वेरी क्रिटिकल बिकॉज हाउ दे बिहेव, हाउ द मार्केट इज बिहेविंग, वॉट काइंड ऑफ वॉट यू कैन से प्रिपरेशन यू हैव टू टेक. सो दिस इज सर्टनली पार्ट ऑफ द ओवरऑल बिजनेस सिस्टम, नॉट जस्ट ऑफ द स्टार्टअप. कमिंग टू योर सेकेंड पार्ट विच इज अबाउट द इंटरिम बजट एंड द फुल बजट. नॉर्मली वी हैव सीन ड्यूरिंग लास्ट 5 to 6 इंटरिम बजट एंड द फुल बजट, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इंटरिम बजट इन दिस सेंचुरी, दैट वॉज इन वे बैक इन 2004, वेन वी सॉ अ गुड चेंज इन द स्टैटिस्टिक्स. दैट मीन्स द एलोकेशन वॉज वेरी हायर एंड यू कैन इजिली रिकॉल दैट इन 2004 देर वॉज अ चेंज इन द political system. It was taken over by the UPA. Again in 2014 we saw some change in the statistics, that I mean the full budget size in the interim budget and the budget size in the full budget, there was some difference, but not that much difference. Apart from that, we have also seen that there are also some policy announcement. Like in 2019, we saw some policy announcement in the interim budget, and also in the full budget, we saw some policy announcement. This year, in the interim budget, we have not seen any kind of policy announcement apart from one roof solar scheme. So we are expecting that there will be some announcement in the full budget. Specifically, if you are talking about the capital expenditure, in the interim budget, it has already been proposed of more than 11 lakh crore rupees of investment for capital investment. We believe that this will continue in this full budget also.
Joining us from Delhi is R.K. Singh. A warm welcome, Mr. Singh. Please ask your question.
Thank you, sir. Sir, maximum mera investment mutual fund mein hai. और जब मैं देखता हूँ गवर्नमेंट पॉलिसी इन्वेस्टमेंट इन कैपेक्स एंड ऑल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 4 तारीख के बाद मार्केट का क्या स्पीड मिलेगा, मंगल को मंगल में होगा या अमंगल होगा?
देखिए, कोई ज्योतिषी तो हम है नहीं सिंह साहब, तो इसलिए मेरे लिए कहना मुश्किल है कि मंगल को मंगल होगा या मंगल को शनि ग्रह भारी होंगे. ये कहना मेरे लिए बिल्कुल ही असंभव है. अभी की स्थिति में देखिए, बाजार क्या देखता है? बाजार देखता है कि नीतियों में स्थिरता अस्थायित्व है कि नहीं. तो जो भी सरकार आती है, अगर उनकी नीतियों में स्थिरता और अस्थायित्व देखने को मिलता है, तो बाजार उसको अच्छे से उसकी प्रतिक्रिया देता है. जाहिर सी बात है कि कंटिन्यूटी, यानी कि कोई भी जो सरकार जारी रहती है, वो भी बाजार के लिए बहुत अच्छा होता है. लेकिन कंटिन्यूटी या निरंतरता रहेगी या नहीं, क्या यही जारी रहेगा या कोई और आएगा, ये कहना अभी के समय बिल्कुल ही असंभव सी बात है. और पहली बात कि मतदाता क्या मत डालते हैं, किसको मत देते हैं, हमें भी पता नहीं होता है और ना ही वहां पर जो लोग बैठे उनको पता होता
है. ये सवाल कई लोगों के है शिशिर, इसलिए इस पर थोड़ी चर्चा बनती है. चुनाव के बाद क्या होगा? क्या बाजार जो इतना बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है, और इसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में भी हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ोतरी हो रही है, खास करके पिछले एक हफ्ते में देखें तो. अब लोग इस समय पूछना चाह रहे हैं हमारे मंच पर भी, मार्केट मंत्रा के, कि क्या प्रॉफिट बुक कर लें या बने रहें. दोनों स्थितियां बन रही है. अगर प्रॉफिट बुक किया और मार्केट और आगे बढ़ गया तो आपको अफसोस होगा.
देखिए, एक तो यह है कि मुनाफे की कभी कोई सीमा नहीं होती है. रोटी की सीमा तो हम तय कर लेते, मुनाफे की सीमा तय नहीं करते. माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा दार्शनिक हो रहा हूं यहां पर, लेकिन हकीकत यह है कि अगर कोई आपसे पूछे आप कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि जितना मिल जाए कम है. तो इसीलिए मेरी हमेशा से यह राय रही है कि आप किस्तों में मुनाफा कमाते रहें, जब जब मौका बने मुनाफा कमाने से हिचकिए नहीं. अब जो आपका मूल सवाल था कि 4 तारीख के बाद क्या होगा, देखिए अभी जो 6 राउंड आज छठे दौर का मतदान चल रहा है, अब मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है. और जिस तरीके के रुझान हैं, जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, बाजार ने काफी हद तक उसको डिस्काउंट कर रखा है. बाजार को सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही चीज चाहिए कि निरंतरता है या कोई बदलाव होता है. निरंतरता की स्थिति में बाजार काफी तेजी से ऊपर जाएगा, कोई बदलाव होता है तो हो सकता है कि बाजार में हमको गिरावट देखने को.
बिल्कुल, और जैसा कि अभी राजेश ने पहली खबर भी पढ़ी थी कि क्यों मार्केट इस सप्ताह 2% से भी ऊपर गया, सेंसेक्स 75,000 के पार हुआ, उसमें सीधी सी बात है कि आप देखें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ साथ उससे कहीं ज्यादा या बराबर, मैं फिगर एग्जैक्टली अभी मुझे ध्यान नहीं है, DIIs ने इन्वेस्ट किया है.
और ये बहुत
इंपॉर्टेंट चीज है,
क्योंकि देखिए आज के दिन में अगर घरेलू संस्थागत निवेशक अगर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, तो ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि भारतीय शेयर बाजारों की विदेशी संस्थागत निवेशकों पर निर्भरता वाली जो बात थी, और ये कहा जाता था कि अगर अमेरिका में किसी को छींक आ जाए तो यह बुखार चढ़ जाता था शेयर बाजार के नजरिए से, मैं कहूं अब वो स्थिति नहीं है.
बिल्कुल,
ये हमारे लिए एक शुभ संकेत.
और ये न सिर्फ DIII बल्कि कोरोना पीरियड के बाद हमने आपने देखा कि किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनकी संख्या में जबरदस्त इजाफा।
और जो उनका मूल सवाल था म्यूचुअल फंड को लेकर के, देखिए जाहिर सी बात है कि आज के दिन में हम किस तरह का म्यूचुअल फंड लेते हैं, प्योर इक्विटी ले रहे हैं या हम बैलेंस फंड ले रहे हैं या डेट फंड को ले रहे हैं, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। देखिए इस समय में इक्विटी फंड या ऐसे फंड जिन्होंने एक हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, उनका एनएवी काफी अच्छा इम्प्रूव किया है। और हमेशा से मेरा मानना रहा है कि अगर आप शेयर बाजार में तेजी का फायदा उठाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड से बेहतर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है, जबकि म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल आपके पैसे को लगा रहा होता है तो आपको कुछ हद तक उसके
और ह्यूजली डाइवर्सिफाइड।
बिल्कुल बिल्कुल।
अगले कॉलर एनआर प्रसाद बेंगलुरु से। एनआर प्रसाद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल पूछ सकते हैं।
Hi, good evening, Rajesh. Good evening, Harsh Ranjan. This is NR Prasad from Bangalore.
Good evening. Good evening. Good evening. Please go ahead.
Mr. Sinha, there are two questions. See, RBI announced that they gave 2.1 lakh crore dividend to the government. This dividend of 2.1 lakh crore is on which transaction done by the government of India? I would like to have more details on this. My second question is, like Indian stock market has Sensex, Nifty, Bank Nifty like this. Similarly, I want to know any top three of the Nasdaq and the New York Stock Exchange where we can get the company's name and we can trade on that. Thank you. These are my two questions.
I don't think we can take the company name in the if we talk about on the specific stock exchanges, if you talk about Nasdaq or NYSE. Rajesh, please correct me if
No, you are correct, but if you want to invest in Nasdaq, there are so many funds through which you can invest in Nasdaq.
And the other thing is that so many Indian companies are listed on NYSE as well as on the Nasdaq. So as a policy of this program, I cannot take any name of any company. Coming to your first question, first of all, let me clarify, it is not the dividend, it is the transfer of the surplus. RBI is not a profit-making organization. RBI only transfer if the surplus is there, and that depends upon the number of factors, and that has been designed according to Bimal Jalan Committee, which gave the recommendation way back in 2018-19. This time, they have also raised the what we call as the contingency buffer from to 6.5%. That means they will have the more money. Now, your question, if I understand correctly, from where RBI is getting money, of course, they have some avenues where they can get money. They invest in international market also, in international debt also, in of the various central banks. And also, though they are providing various services to the government of India in terms of managing their debt, so they are also earning some commission on that. So these are their source of earning. So first of all, please be very clear, this is not the dividend, but this is a transfer of the surplus. And that is the more correct term rather than saying the dividend. Because when we say dividend, that means we are talking about a profit-making organization. And it is earning a profit. So that's not the situation.
And here, you have talked about RBI ki earning, we don't need to forget this too, that the banks have their surplus fund RBI ke paas पार्क कर देते हैं।
बिल्कुल। और रिजर्व बैंक जो बैंकों को कर्ज देता है, कहते हैं ना
लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट,
बिल्कुल लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है।
यस।
तो जो बैंकों को वो पैसा दे रहा है उस पर वो ब्याज ले रहा है
जी,
तो वो ब्याज जो है आपकी कमाई है, और उस कमाई का एक हिस्सा आप भविष्य की अनिश्चितताओं से निपटने के लिए रखते हैं और एक हिस्सा आप सरकार को देते हैं। ये व्यवस्था सालों से चली आ रही है, बीच में कुछ विवाद की स्थिति बनी थी जिसके बाद डॉक्टर बिमल जलान कमेटी बनाई गई और उसके सुझाव के हिसाब से ये अतिरिक्त जो है
दिया गया। क्योंकि क्योंकि शिष्य ये सवाल हमेशा आता है कि वो कहां से अर्न करते हैं, तो आपने बताया है कि जो बैंकों को लोन देता है उस पर वो ब्याज देता है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं,
और बाहर पैसा लगाते हैं, बाहर के जो अलग अलग सेंट्रल बैंक के जो डेट है, इंस्ट्रूमेंट्स है। ये नहीं कि रिजर्व बैंक किसी भी देश में शेयर बाजार में जाकर पैसा लगाता है, ये स्थिति नहीं है।
डेट,
उनके डेट में जो पैसा लगाता है जो कि सॉवरेन बैक्ड होता है, उससे उनको ब्याज मिलता है, तो वो उनकी कमाई है।
So she is increasing the funds available for capex. That would certainly boost the quality of the fiscal deficit.
Certainly, because whenever we talk about the fiscal deficit, the big question is whether we are investing more in revenue or whether we are going for more capital. So if we see the last 3-4 budget, we have seen from 7.5 to 9, from 10, and now we are talking about 11 and triple 11 lakh crore.
Yes.
So that's a very good amount. And if we talk about, say, 47 lakh crore rupees of budget, and out of that 11 lakh crore rupees is spending on the capital, that means you are giving some kind of multiplier effect to the economy. Because when 1 rupee of capital expenditure is there, it has a multiplier effect of more than 4 rupees 80 paise. Exactly. That's a very
and
good
that
thing.
Is why there is so much of enthusiasm exactly. witnessed exactly. day before in the
stock market. If you see the stock market, because stock
the
market
positivity,
yes,
the sentimental positivity that was there was extremely important.
Yes, or isi positivity mein, before we go to the next caller, Harish Chatterjee and Sanjeev from Ghaziabad, hum ek छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दें, जो खुशी की बात है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4,54,90,00,000 डॉलर बढ़कर अपने नए उच्चतम स्तर 6,48,70,00,000,000 तक पहुंच गया है और यह लगातार तीसरा हफ्ता है जब विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
हरीश चैटर्जी फ्रॉम कोलकाता इज विद अस, वार्म वेलकम हरीश। हेलो हरीश, आर यू देयर?
लग रहा हरीश जी से अभी संपर्क हो पा रहा है, संजीव के पास चलना पड़ेगा। संजीव गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या आप सुन पा जी क्या सुन पा रहे हैं?
हाँ जी सर, नमस्कार।
नमस्कार, सवाल पूछ लें हरीश। संजीव
सर, मेरा सवाल ये है कि जो अभी कल एक रिपोर्ट आई थी कि इंडियन स्टॉक मार्केट अब 5 ट्रिलियन की कैश मार्केट में मतलब हो चुकी है वैल्यू, तो ये 5 ट्रिलियन उस 5 ट्रिलियन से कितना डिफरेंस है जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, क्या ये वही है?
नहीं, ये बिल्कुल वो नहीं।
नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल। देखिए संजीव जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो संजीव जी नाम से। संजीव जी, एक याद रखिए, जो सरकार का लक्ष्य है वो 5 ट्रिलियन डॉलर का है इकोनॉमी का, और जब हम शेयर बाजार की बात करें वो 5 ट्रिलियन रूपीज की बात है, और वो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि शेयर बाजार में जितने शेयर खरीद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं आज की तारीख में, उसकी बाजार कीमत क्या है, ये आपका 5 ट्रिलियन डॉलर है,
5 ट्रिलियन रूपी
है। तो प्लीज संजीव जी, दोनों के बीच के अंतर को
ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जैसा कि शिशिर ने बताया, मैं उसको पुनः रिपीट कर दूं क्योंकि इस पे बहुत कंफ्यूजन हो रहे थे और कई सवाल पूछे गए कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट में, शेयर मार्केट में जिन शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, जो उपलब्ध है खरीदने बेचने के लिए, उनका अंतिम मूल्य उस दिन का जो है वो 5 ट्रिलियन रुपया है, और सरकार जहां पहुंचना चाह रही है, भारत जहां पहुंचना चाह रहा है, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी अब जापान को पीछे छोड़ने के बाद 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, उसे हम GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं,
और अभी के समय में वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर।
बिल्कुल, और जापान से हम थोड़ा सा ही पीछे हैं क्योंकि जापान अभी चौथे नंबर पर आ गया है, जर्मनी चला गया है तीसरे नंबर पर।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, मालदीव्स इज सेट टू इंट्रोड्यूस इंडियाज रूपे सर्विस। द मूव इज बीइंग सीन टू बोल्स्टर द मालदीवियन रूपिया। मीनवाइल देयर हैज नॉट बीन एनी अनाउंसमेंट ऑफ द टाइमलाइन फॉर द लॉन्च। लोकल न्यूज रिपोर्ट्स कोट्स मालदीव्स मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड मोहम्मद सईद, हु हाईलाइटेड हाउ बोथ इंडिया एंड चाइना हैव एग्रीड टू कंडक्ट bilateral trade using local currencies. This initiatives aim to reduce dependency on the US dollar and strengthen regional financial integration. Recently, Maldives confirmed that India and China would cooperate to facilitate import payments in their respective currencies. This policy shift is projected to cut Malay's annual import bill of $1.5 million by nearly 50%. Minister Saeed noted that he met with Indian High Commissioner Monu Mahawar, who assured New Delhi's support in facilitating the settlement of import payments in Indian rupees, marking a significant step in economic collaboration between the two nations. RuPay, developed by the National Payments Corporation of India, is India's premier card payment network. It enjoys widespread acceptance across ATMs, point-of-sale devices, and e-commerce platforms in India. Currently, RuPay is accepted in various countries including Bhutan, Nepal, Mauritius, UAE, and Singapore. This is quite an encouraging step that the two countries have agreed to conduct business in Indian rupees, making a significant economic collaboration between the two nations.
Yeah, a number of countries have entered into the agreement with India how to make use of their own currency in settling the trade. And that is giving comfort not just to the importer country, but also to the exporter country. And sometimes it is more beneficial to conduct trade in local currency rather than in dollar. That is one more step towards, you can say, internationalization of rupee. Of course, that is a very, very ambitious task we are talking about, but this is one small step towards that. If more and more countries are entering into this kind of agreement, that will certainly help even our pressure on our own rupee.
Okay. International settlement, जो ट्रेड सेटलमेंट की बात थी, मुझे अगर ध्यान हो सही तो ईरान से लगभग दो साल तीन साल पहले ये चीज हुई थी,
और आज के दिन में लगभग 20 देश हैं जिनके साथ, 22 अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं, तो 22 देशों के साथ ऐसा समझौता हो चुका है जहां पर हम रूपी में ट्रेड सेटल करते हैं। तो हमारे लिए भी एक अच्छा हो जाता है कि हमारे पास रूपये के ऊपर डॉलर के भाव के बढ़ने से बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना, दबाव बढ़ता है, वो स्थिति नहीं।
बिल्कुल। भवेश मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवेश, बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या सवाल है?
सर, मैं ये कहना चाहूँ, यूपीआई से अपना इंडियन को क्या फायदा, मतलब एज ए इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा है यूपीआई से?
देखिए,
वर्ल्ड में यूपीआई अगर एक्सेप्ट हो रहा है तो इंडिया को क्या फायदा हो रहा है?
देखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अगर आप हिंदुस्तान के स्तर पर देखें तो सबसे बड़ी चीज है कि आपके लिए लागत लेन देन की कम हुई है। एक तो आप इस तरीके से देखिए, अगर आप अपने ही देश के, पहले मैं बाहर जाऊं उसके पहले मैं अपने देश की बात करूं, अगर आप देखा होगा कि आपने कई बार कार्ड पे आप जब बिजनेस मान लीजिए भुगतान करते हैं तो कई बार आपसे दुकानदार कहते थे कि एक्स्ट्रा पैसा आप दे दो। यूपीआई के मामले में ये सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि वो आपके खाते से जुड़ा हुआ और वो क्यूआर कोड स्कैन करके आप आसानी से लेन देन कर लेते हैं। जहां तक बाहर जाने की बात है, बाहर में क्या होता है कि बाहर में अगर आपने यूपीआई के जरिए किया है, जैसे सिंगापुर के साथ हमने समझौता किया या फिर यूएई के साथ समझौता है, ऐसे देशों में आपको इस बात की चिंता नहीं होती कि हमको फॉरेक्स रिजर्व वहां पे खरीदना है। वो आपका सेटलमेंट होगा, उसमें जो चार्जेस कुछ लग सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन वो डेली के बेसिस पे जो टेंशन होता था कि आपने यहां से जब पहुंचे एयरपोर्ट पे तो पहला काम है कि आपने उसको अपने रुपए को डॉलर में एक्सचेंज कराया, फिर वहां पहुंचे तो फिर डॉलर को आपने दिरहम में या स्थानीय मुद्रा में कराया, तो एक आम उपभोक्ता के लिहाज से सोचे तो आपके लिए लेन देन और सहज और आसान हो जाता है बाकी के देशों में।
All three major US indices rebounded yesterday, though the minutes of the Fed meeting brought in considerable speculation in the market, which led to Thursday's loss. The markets have found hope in improving consumer outlook on inflation. Yesterday's rebound sent Nasdaq to a fifth straight week of gains and record closing high. The Nasdaq rose 1.10%, S&P 500 rose 0.70%, and Dow Jones Industrial Average ended positively flat. So, how do you see going forward the Fed meetings? Minutes have said that they are not likely to do any shift in the rate cut, etc. So what's your take? What could be the repercussion of that on the Indian market or in the world market as such?
So there are two situations. Either we are going for the status quo, which is more probably
yeah, that.
And the second situation is we are going to hike the rate, because the inflation situation in US has not very improved. We have not seen much improvement in that.
Right.
So as of now, the indications are that we will go for the status quo. That means the Indian market will not see that kind of reaction from the foreign investor if there is any indication from the Forex, the Federal Reserve, that they are going to change that. However, if there is a lower thing, then it will certainly going to help the Indian market.
आज के लिए इतना ही, समय समाप्त हो रहा है। शिशिर, आप आए स्टूडियो में, बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद
शिशिर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, बेंचमार्क इंडिसेस सर्ज 2% इन सेकेंड स्ट्रेट वीक एंडिंग 24th of May। सेंसेक्स राइजेज 1,404 पॉइंट्स, निफ्टी गेन्स 455 पॉइंट्स। Maldives set to introduce India's rupee service, and India's forex reserves jump to a new all-time high of $648.7 billion. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
Namaskar. Oh,
सकता।